करवाइए कुछ नहीं कहेगा। व्यक्ति के साथ जरा मुश्किल है। व्यक्ति को जिस चाहे को आप अपना अधिकार जमा करके अपना नहीं दे सकते, अपना बना लेने की बहुत अपनापन चाहिए। व्यक्ति को रिप्लेस नहीं कर सकते आप कि ये व्यक्ति पसंद नहीं है आप इसकी जगह पर दूसरा लाएंगे। व्यक्ति रिप्लेस नहीं हो सकता। चीज रिप्लेस हो सकती है, नई कार आ सकती, ठीक वैसी ही कार आ सकती, लेकिन ठीक वैसा ही व्यक्ति व्यक्ति नहीं मिल सकता। दो व्यक्ति एक जैसे नहीं हो सकते। आप व्यक्ति को व्यक्ति की जगह लाके खड़ा नहीं कर सकते। व्यक्ति से संबंध हमारे हैं तो उतने मूर्छा के संबंध नहीं है। हमारे सारे संबंध व्यक्ति के साथ स्वार्थ के, चीजों के साथ मूर्छा के, और चीजों के साथ जो मूर्छा से संबंध है उन्हीं को बौद्ध दर्शन में तृष्णा कहा और उन्हीं को हमारे अपने दर्शन में परिग्रह कहा। व्यक्ति के संबंध हमारे स्वार्थ के, स्वार्थ पूरा हो जाता है तो संबंध टूट जाते हैं, स्वार्थ पूरा नहीं होता तो संबंध टूट जाता है। किसी से आपका काम कर गया फिर देखिएगा क्या करते हैं आप, फिर ध्यान ही नहीं देते उसकी तरफ जब तक, और देखते हैं कि काम कर रहा है कि नहीं कर रहा तो भी ज्यादा ध्यान नहीं देते। व्यक्ति के साथ संबंध में ये थोड़ी सी मुश्किल है, और वो संबंध हमारे अब बिल्कुल उपयोगिता के संबंध हो गए हैं। कौन कहता है खिदमत के लिए होते हैं, अब तो रिश्ते जरूरत के लिए होते हैं। खिदमत और मोहब्बत के लिए नहीं होते हैं। किसी से आपकी जाके हमारे संबंध नहीं होते हैं, किसी की सेवा के लिए हमारे संबंध नहीं होते। हमारे सारे संबंध तो जरूरत के लिए होते हैं। हमारी जरूरत जितनी है उतने हमारे संबंध बढ़ते चले जाते हैं। हमें दोनों चीजों पर विचार कर लेना है कि क्या हमने चीजों से संबंध जोड़ करके कोई सुख पाया है। अगर पाया है तो ठीक है, जोड़े रखिएगा, वरना अगर नहीं मिला है तो फिर सोचिएगा कि संबंध बनाना है चीजों से, लेकिन कैसे संबंध बनाए कि आनंद ही मिले और चीजें हमारी ऊपर हावी ना हो। व्यक्ति से संबंध भी हमारे बने हुए हैं और आनंद भी आए। मैं आपके संबंधों को तोड़ने की बात बिल्कुल नहीं कर रहा। हम सब तो ये समझना चाह रहे हैं कि आखिर संबंधों की तासीर क्या है और हम उससे विपरीत तो नहीं जा रहे हैं। अगर दुख मिल रहा है तो मानिएगा कि विपरीत जा रहे हैं, और अगर वे संबंध हमें सुख दे रहे हैं, कौन सा वाला सुख जो कभी कोई छीन नहीं सकता, जो कभी किसी से नहीं मिलता, जो अपने भीतर से आता, उस वाले सुख की बात कर रहा हूं। चीजें सुख नहीं देती। चीजों को हम जैसा हैंडल करते हैं वैसा हम सुख और दुख पाते हैं। व्यक्ति को खुद को नहीं देता। व्यक्ति के साथ हमारे जैसे संबंध होते हैं वैसा हम उसको खुद को कुछ से ले लेते, निकाल लेते हैं। अब बताइएगा कि हम क्या करें, ऐसे में क्या करें। ऐसे में तो बड़ा आसान ये है कि हम थोड़ा सा अपना दृष्टिकोण बदल रहे हैं, सीधे वहीं की वहीं रहें और हम अपना दृष्टिकोण बदल रहे हैं। हमारा संबंध चीजों के साथ, वस्तुओं के साथ सिर्फ उपयोग का हो, उपयोगितावाद नहीं हो, यूटिलिटी नहीं है, यूजर्स है। दोनों शब्दों में फर्क है। यूटिलिटी में तो ऐसा होता है कि पानी गिरे तो हमारे खेत से गिरे, बाजू वाले की ना गिरे, सूरज आ गए तो हमारे भी आ गए, सबको रोशनी मिले, चाहे ना मिले। जो जो चीजें हैं, नदियां बने सिर्फ हमारे उपयोग के लिए, दुनिया भर की जितनी चीजें हैं उन सबका उपयोग मैं कर सकूं, ये उपयोगिता बात है, ये यूटिलिटी का सिद्धांत है। सब चीजें हमारे लिए, लाखों प्रकार की, दस लाख प्रकार की वनस्पति है तो सब हमारे खाने के लिए। ऐसा नहीं है। मेरे अपने जीवन चलाने के लिए जो मेरे उपयोग में आता है मैं उतना उपयोग में लेऊंगा। अगर एक लोटा पानी नदी का मैंने ले लिया तो मैंने बाकी नदी को सबके लिए छोड़ा है। मेरे मन में ये विचार बिल्कुल नहीं है कि ये नदी मेरी है, ये नदी सबकी है, लेकिन वो जो एक अंधी पानी है वो मेरा है। ऐसा काम आसानी से कर सकते हैं, पर कठिन है। नदी के मामले में तो सरल है, लेकिन वो भी 50 जोड़ी कपड़े आपने बनवा के रखे हैं, उसमें से जब 49 नहीं पहनते हो, एक ही पहनते हो, 49 में से किसी एक को देने का मन हो जाए, तब क्या करिएगा? सोच लीजिएगा, बात वहीं नहीं रुक जाएगी, बात तो यहां तक ले जानी पड़ेगी। अब जबकि मैं 4 रोटी थाली पर रखे बैठा हूं और अगर कोई बाहर से आवाज देता है तो मेरा मन उसको दुस्कारने का बनता है या कि उसमें से आप 3 खाकर के संतुष्ट होकर एक उसे देने का बनता है? मैं आपसे संबंध की बात कर रहा हूं, बहुत व्यवहारिक की बात कर रहा हूं। हम देखें अपने भीतर कि अगर हम इसमें उत्तीर्ण हैं, अगर हम इसमें पास हैं, तब फिर हम इन संबंधों से ऊपर उठ गए हैं। संबंध होते हुए भी हम उन संबंधों से निर्बंध हो गए। हमारी सारी यात्रा उसी निर्बंध होने की तो है। ये थोड़ी सी थोड़ी थोड़ी चीजें हमको अपनी कितनी ग्रिप में लिए हैं, ये हमें धीरे ही छोड़ती हैं। हम इनकी ग्रिप से बाहर ही निकल पाते हैं और हम अपने तक तो पहुंच ही नहीं पाते हैं। पहुंचना तो हमें अपनी आत्मा तक है, हमारा सीधा संबंध उससे होना है। लेकिन ये सारे संबंध हमको अपने उस आत्मा से संबंध होने से अगर रोकते हैं तो इन सारे संबंधों को मुझे समझना होगा ठीक से, फिर से ये बात फिर से इनको एक साथ विचार करना पड़ेगा। मैं तो सोचता हूं कि अगर ये छोटी सी पुस्तक मेरे और आपके संबंधों के बीच को खराब करती है तो ये पुस्तक एक तरफ रखी रहे, मुझे इससे कोई लेना देना नहीं। कैसा हम कर पाएंगे? एक छोटी सी चीज अगर हमारे संबंधों के बीच की आत्मीयता खंडित करती है तो क्या हम उस चीज को एक तरफ रख पाएंगे या उसी चीज से चिपके रहेंगे? ये वस्तु से संबंध के बाबत हमें विचार कर लेना। एक नौकर था, सेठ के यहां काम करता था, बहुत अच्छा नौकर था, बहुत प्यारा लगता था सेठ को, इसलिए लगता था कि ईमानदार था। बेईमान आदमी को भी अगर कोई ईमानदार मिल जाए तो प्यारे लगता है। चीजें करीने से सजा करके रखता था। एक दिन ऐसा हुआ कि साफ करते करते घड़ी हाथ से फिसली, नीचे गिर करके टूट गई। शाम मालिक लौट के आया तो धीरे से नौकर ने कहा कि वो जो घड़ी सामने लगी रहती थी मेरे हाथ से टूट करके गिर गई है। सिर से एकदम शॉक्ड हो गया। उसने कहा तुम नहीं जानते और कोई घड़ी टूट जाती तो शायद इतना दुख नहीं होता। ये घड़ी बहुत कीमती थी, मैंने अपने जीवन की शुरुआत ही इस घड़ी से की थी। मुझे पिता ने ये घड़ी, जब मैंने घड़ी देखना शुरू कर दिया था तब दी थी, बहुत कीमती थी। बहुत पीड़ा है, सेठ रात भर सो नहीं सका थी। नौकर को ज्यादा फर्क नहीं पड़ा, उसकी तनख्वाह में से थोड़े से पैसे अगर कट जाएंगे तो कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। वैसे सेठ ऐसा नहीं है, वो ऐसा नहीं करेगा, बस इतना विचार करके। और उसने तो अपना दरी बरी बिछाई चीज तो नौकर के हाथ से क्योंकि पीड़ा तो उसको होनी चाहिए। चीज से ज्यादा कॉन्टेक्ट तो नौकर का था क्योंकि मेरे ख्याल से तो वो सबसे ज्यादा ध्यान रखता था उस वस्तु का और साफ भी वही करता था। सेठ तो सिर्फ एक नजर डालता था सुबह शाम आके, फिर सेठ को सोचे हम इस बात को आखिर क्या था जो उसको पीड़ा दे गया? क्या घड़ी का टूटना पीड़ा दे गया? अगर घड़ी का टूटना पीड़ा देता है तो सबको समान रूप से देना चाहिए, तब तो फिर नौकर को भी पीड़ा होनी चाहिए। घड़ी के टूटने से किसी को पीड़ा नहीं होती, घड़ी के साथ जो रिश्ता है उसको ठीक से न समझने की वजह से पीड़ा होती है। आप अपना दृष्टिकोण बदल लें, आप उससे रिश्ता थोड़ा सा चेंज कर लें, आप भी आराम की नींद सोएंगे जैसा कि नौकर सो रहा है। लेकिन दूसरे दिन पांचा पलटा, सुबह से तो उठ के सेठ ने कहा कि वो जो घड़ी कल टूट गई, मैं बहुत दिन से सोच रहा था कि पुरानी हो गई है, मैं नई ले लूंगा और ये पुरानी तुम्हें दे दूंगा। अब तो सारा दिन खाना नहीं खाया गया नौकर से। अगर यूनिवर्सिटी से वो घड़ी हो गई थी, अब टूटने की पीड़ा उसको साथ कितना आसान है समझना, लेकिन भैया उतना ही कठिन है समझना। पूरी जिंदगी निकल जाती है ये संबंधों की ताकत समझ में नहीं आती है, और बनाते चले जाते हैं, बनाते चले जाते हैं, सोचते हैं कि शायद ऐसा संबंध बनाएंगे तो सुख मिलेगा, शायद ऐसा संबंध बनाएंगे तो सुख मिलेगा। लेकिन संबंध तभी सुख देते हैं जबकि हम उनकी वास्तविकता को समझ कर उसके साथ व्यवहार करते हैं। जो वास्तविकता को जान के व्यवहार करता है वही तो कहलाता है कि निश्चय सापेक्ष व्यवहार करने वाला है। फिर उसे चीजें अपनी गिरफ्त में नहीं ले पाती है। क्या हम ऐसा संबंध बना पाएंगे, हम सोच रहे हैं। अब आज जबकि हम यहां से जाएंगे, हम एक बार फिर से अपने संबंधों पर विचार करेंगे। कई बार तो ऐसा तक हुआ है, मेरे अपने जीवन में ऐसा हुआ है, पता नहीं आपके जीवन में हुआ कि नहीं हुआ, भी होगा तो शायद ध्यान नहीं दिया होगा। हम खाना खाने में बैठते थे, हमको कई चीजों का बहुत शौक था, आपको भी होगा, हर आदमी को होता है, साधु बनने के बाद भी हो सकता है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। नहीं, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं, इससे हम कोई नीचे नहीं हो जाएंगे। जो वास्तविकता है उसको स्वीकार करना, ढिलाईवा रियलिटी जो जिंदगी निकल गई, वास्तविकता से पलायन तो हम जिंदगी भर से करते हैं। वास्तविकता को अपना चेहरा दर्पण में देखने में आपको तकलीफ क्या है? अगर काली दिखती है तो हमारी है, साफ करने की जिम्मेदारी भी हमारी है, दर्पण की थोड़ी है। चीजें खाने की होती हैं जो सबसे प्रिय होती हैं, उनके साथ आप कैसा व्यवहार करते हैं? सब पहले खा लेते हैं, जो प्रिय चीजें उसको रखे रखते हैं, वो सीजन का हरी है, इसमें क्या हुआ तो बाद में खाएंगे। और मजा ये है, अगर थोड़े बच्चे हैं अपन तो फिर दूसरे वाले की जो खत्म हो जाएंगे तब मजा लेके खाएंगे। देखिएगा संबंध, देखिएगा चीज वही है लेकिन हम उसके साथ कैसा संबंध, कितनी मूर्छा का संबंध है। कपड़े पहनेंगे, अगर नए वाले लाए होंगे बड़े समझ समझ के पहनेंगे, धक्का ना लग जाए। जिंदगी को पूरा धक्का लग रहा हो लेकिन कपड़े को धक्का नहीं लग रहा। उठेंगे बैठेंगे तो संभल के, कभी कभी जीव राशि को देख करके संभल के नहीं बैठे होंगे, लेकिन अपने कपड़े के गंदे ना होने के लिए हमने कई बार इस तरह की चेष्टा की होगी कि हम संभल के बैठे। ये स्थिति न होती हमारी, हम सब के, हमने पता नहीं किस किस चीज से संबंध बना रखे और कितना कितना उसे संभाला है। एक बार अगर अपने से संबंध बना के अपने को संभाला होता तो आज हमारी ये दशा है। खैर, जो हुआ उसके लिए तो सिर्फ रोया जा सकता है, दुखी हुआ जा सकता है, लेकिन आगे अब हमें तो संभालना पड़ेगा। कौन संभालेगा? जो अपने को नहीं संभाल पाता उसे तो शायद कोई भी नहीं संभाल पाता, ऐसा हमने कई बार सुना होगा। केवल अपन शुरू करें अपने को संभालने की। क्या तो तटस्थता का संबंध हमारा हो सकता है व्यक्ति से, वस्तु से? फिर उसके बाद बात करेंगे कि इन सारे संबंधों से पार होने के लिए भी कोई संबंध हम निर्मित कर सकते हैं क्या? एक छोटी सी घटना और हम समझ लें कि हाँ, वस्तु से जैसा हमने तटस्थता का संबंध बनाया है, ऐसे ही व्यक्ति से भी तटस्थता का संबंध बना सकते हैं। एक बात ही बहुत मुश्किल से उसके दो बेटे हुए थे। घटनाएं हो सकता है आपने सुनी हो, मैं कोई पहला व्यक्ति नहीं हूं जो आपसे बात कर रहा हूं। आपके जीवन में बहुत सारे लोग आए होंगे जिन्होंने आपसे बात की होगी, उन सब घटनाओं को आपने सुना होगा, पर आज हम शायद वो नहीं हैं जो हम कल थे या कि कल होंगे। आज की मनोदशा में, आज की भाव दशा में हम उस चीज के क्या अर्थ निकालेंगे हम पर निर्भर करता है। माँ थी, उसके दो बेटे थे, बहुत मुश्किल से वो दो बेटे उसके हुए थे। कोई भी चीज आसानी से मिल जाती है उसकी उतनी इंपॉर्टेंस नहीं होती, कोई भी चीज मुश्किल से मिलती है उसकी दुर्लभता का एहसास हम करते हैं। उसे था, उसके पिता को भी था, और वे लड़के जब 20-20 बरस के हो गए तब एक दिन वे नदी नहाने गए और वापिस उनकी लाश लौटी थी। तब क्या करिएगा, तब आप क्या करिएगा, मां क्या करेगी, पिता क्या करेगा। दोनों लाशें दरवाजे पर लाके रखी गई हैं, मां को आवाज दी गई है, दोनों बेटे लौट आए हैं, लेकिन उनके शरीर लौटे हैं, वे नहीं लौट पाए हैं। हम भी यहां से लौटेंगे, कुछ लोग के हाथ हमारा शरीर आएगा, पर हम तो कहीं और किसी और शरीर की चिंता में लगे होंगे। मां रोटी बना रही है, पिता आता होगा खाने के लिए, क्या करे, रोटी बनाना छोड़ दे, रोना रोना शुरू कर दे। हाँ, वैसे तो मां होने के नाते तो यही करना चाहिए, लेकिन बाहर आई, एक नजर बच्चों के लाश पर डाली और कहा कि सुनो जल्दी करो, इनके पिता खाना खाने आते ही होंगे, वे अगर देख लेंगे तो खाना ही नहीं खा पाएंगे, इनको भीतर के कमरे में ढक करके रख दो, मैं खाना बना लू, आपसे बनाया जाएगा खाना, आपसे खाया जाएगा खाना, क्यों नहीं खाया जाएगा, क्यों नहीं। आप स्वीकार कर रहे हैं कि जो घटित हुआ है वही घटित हो सकता था, जितने दिन का संयोग था उतने दिन का तो था। बहुत कठिन है, कहना बहुत आसान है, करना उतना ही कठिन है। मुझे कई बार ऐसे भी लगा करता है, जब थोड़ी बड़ी बातें सुनता हूं तो मुझे भी कई बार लगा करता कि अरे ये आत्म प्रवचन हम कब तक करते रहेंगे, इन बड़ी बड़ी बातों में कब तक उलझे रहेंगे और अपने को ठगते रहेंगे, इन छोटी छोटी बातों में तो रुकती नहीं और बड़ी बड़ी बात कर रहे हैं, क्या हम इनमें पास हो गए हैं, क्या हम वस्तु के परिणाम को इतनी आसानी से स्वीकार कर लेते हैं, नहीं कर पाते, क्योंकि हमने उसमें अपने संबंध को डाल रखा। पर उस मां को देखिएगा, रोटी बना रही है जो कि तब बीच बीच में अगर आंसू आ जाते हैं तो पांच पी रही है। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि नहीं आते होंगे, आते होंगे, पर इतनी हिम्मत नहीं है, वो विचार कर रही है, संबंधों के बारे में विचार कर रही है। पिता आते हैं, आवाज देते हैं, दोनों बेटे कहां गए, नदी नहाने गए, लौटे नहीं, लौट तो आए, तुम खाना खा लो फिर मिलेंगे। बहुत मुश्किल है, अभी नहीं मिलेंगे, नहीं, खाना खाने के बाद ही मिलेंगे, मैंने दोनों को समझा दिया है, तो तुम्हारे खाना खाने के बीच में नहीं आएंगे। अच्छा ठीक है, तुम तो हमेशा जो है ऐसे ही करती हो, कोई ना कोई तुम्हारा हिसाब चलते ही रहता, अच्छा लाओ खाना खा लेते हैं। खाना खाने के बाद, खाना खाने के आखिरी समय उसने धीरे से पूछा कि सुनो एक बात पूछनी है, वो जो नशेली अपन बाजू वाले के यहां से लाए थे, मैंने तुमसे बिना पूछे वो मांगने आया था, उसे लौटा दी, तुम कुछ कहोगे तो नहीं, इसमें क्या कहना, अरे जो बाजू वाले की नशेली थी वो मांगने आया था, वो मेरे से बिना पूछे तुमने उसे दे दी, तो इसमें तुम्हें क्या आवश्यकता थी मुझसे पूछने की, तो तुम मेरे लिए यही कहते हो। हाँ, मैं तुम्हारे लिए यही कहता हूं, तुमने अच्छा किया, लौटा दिया, आओ तो फिर मेरे साथ, और कमरे में ले जाकर के चर्चा हटा के कहा कि 20 साल के लिए ये हमें और तुम्हें मिले थे, आज उनका समय पूरा हो गया, वापस लौटने का समय था, मैंने तुमसे बिना पूछे ही स्वीकार कर लिया, वो दोनों चले हैं, तुम क्या कहते हो मेरे लिए, मैंने गलत तो नहीं किया, अब बताइए आप क्या कहिएगा। इतने आसानी से स्वीकार कर लिया कि वो चीज दूसरे की थी, कहीं और उसका संयोग था, हमारे साथ तो 20 वर्ष का ही संयोग था, पूरा हो गया, मांग में आया था, हमने वापस लौटा।
शायद व्यक्ति के साथ इतनी आसानी से व्यवहार कर सकेंगे और फिर भी हम अपना जीवन बहुत शांति से निकाल सकेंगे, गुजार सकेंगे, सोचिएगा और जरूर से अपने जीवन को थोड़ा दिशा दीजिएगा। हर एक और आखिरी बात, इन सारे संबंधों के बीच एक और संबंध है जो हमारा भगवान से संबंध है, वो इसका भी हमें समझ लेना चाहिए। कभी कभी तो हम भगवान से संबंध भी उपयोग का ही जोड़ लेते हैं। बस थोड़ा सा समय और आपका, मैं जानता हूं आपको बहुत सारे काम हैं, पर क्या करूं, मन नहीं मानता कि आपसे बात करूं, मैंने जो पाया है वो सिर्फ मेरे तक ही ना रहे, आपका भी है, वो पूरा अधिकार उस पर आपका है, बस इसी वजह से यहां आके बैठ जाता हूं, और जब जब आप बुलाएंगे तब तब आके बैठ जाऊंगा, बाकी अब मन नहीं करता। इन सब चीजों को जितने गौर से देखता हूं, इन सब चीजों में उतना रचने कसने का मन नहीं करता, पर फिर भी कर्तव्य है। और आपके बीच 2-5 मिनट हो, भगवान के संबंध के बारे में भी हमें विचार कर लेना चाहिए, कई बार हम वहां भी चूक जाते हैं, हमारा भगवान से संबंध भी कई बार उपयोग का हो जाता है, स्वार्थ का हो जाता है, उस श्रद्धा का नहीं रहता, कई बार तो तटस्थता का संबंध हो जाता है कि नहीं आए भगवान हमें क्या करना, ऐसा भी हम कई बार सोच लेते मन ही मन कि क्या किया भगवान ने हमारा, कितनी विपत्ति आई फिर भी क्या हमारी मदद करने आए, ऐसा तक हमारे मन में विचार आ जाता है, जैसे कोई भगवान ऊपर अलग से बैठे हों और हमारे इंतजार में बैठे हों कि ये आएंगे और हम इनकी मदद करने चलेंगे, लेकिन क्या करें हमारा मन ऐसा संबंध जोड़ देता है भगवान से, जबकि भगवान का संबंध तो एक ही हो सकता है, वो है श्रद्धा का, वो है अनुराग का, वो है आत्मीयता का, एक गहरी आत्मीयता, एक गहरा अनुराग यदि भगवान से हो जाता है तो मानिएगा जिससे अनुराग होता है हम उसके जैसे बनने की कोशिश करते हैं, हम वो उसकी क्वालिटी देखना शुरू करते हैं, कभी भी आप जिस क्वालिटी नहीं देखेंगे जिससे आपकी आत्मीयता है, आपको आश्चर्य ऐसी बात कैसे कह रहे हैं, बहुत आसान सी बात है, कभी आपने किसी स्टोर पर जाके पेन या पेंसिल खरीदी होगी और जब आप पेन खरीदते हैं कितनी वैरायटी देखते हैं, किसी का ढक्कन ठीक नहीं लगता, किसी की लिप ठीक नहीं लगती, किसी का कलर ठीक नहीं लगता, और कितना विचार करते हैं, रिजेक्ट कर देते हैं, और जो पेन खरीद के ले आते हैं फिर रखते हैं हमारे कोई मिले और कहे कि देखो दिखाएं दिखाएं मेरा कैसा खरीदा, और देख करके कहे कि इसका हैंडल तो ठीक नहीं है, तो आप कहीं ग्रहण दो सब बढ़िया हमारा पेन है, अब इसके बारे में हमको दिमाग नहीं सुनना है, ये क्यों है, जिससे हमारा अनुराग हो जाता है उसकी फिर डिसक्वालिटी नहीं दिखती, उसकी फिर क्वालिटी दिखती है, और वो क्वालिटी हमारे भीतर भी हम अपने भीतर भी हम उसको प्रकट करना चाहते हैं। भगवान को अगर एक बार अनुराग हो जाए तो भगवान बनने की शुरुआत हो जाती है, अभी तो हमारा चीजों से अनुराग है और वो चीज हो गए, हम खुद चीज हो गए, जिसे उपयोग में जैसे हमने व्यक्ति को भी वस्तु बनाकर के उसका उपयोग करना शुरू कर दिया है, क्योंकि हमारा उससे अनुराग से व्यक्ति और वस्तु से अनुराग
हमें व्यक्ति और वस्तु ही बनने देता है, लेकिन अगर वो अनुराग वहां से उठ करके भगवान की तरफ चला जाए, अनुराग नहीं टूटेगा, अनुराग की दिशा में बदल जाए। आपके संबंध जो के जो बने रहेंगे, लेकिन उन संबंधों से जो आनंद मिलता था वो मिलना शुरू हो जाए। भगवान से अनुराग हमें भगवान बनने में मदद करता है। और एक बहुत छोटी सी घटना, अनुराग शब्द की व्याख्या मैं नहीं कर सकता, मैं किसी को ये नहीं समझा सकता किसी बेटे को कि माँ से इतने ऐसे किया जाता है, पिता से प्यार ऐसे किया जाता है, ये सिखाने वाली चीज नहीं है, ये तो हो जाता है। मैं आपको अनुराग नहीं सिखा सकता कि भगवान से कैसा अनुराग हो सकता है। चीजों का उपयोग तो कोई भी सिखा सकता है, किसी भी कॉलेज में आज तक ये ट्रेनिंग नहीं दी गई होगी कि आप आत्मीयता कैसे रख सकते हैं, आप अपनापन कैसे रख सकते हैं, सिखाए आप पूजा कैसे कर सकते हैं,
आप पूजा की वाणी क्रिया सिखा सकते हैं, लेकिन पूजा करवाना बहुत कठिन है, पूजा कर पाना बहुत कठिन। आप प्रशंसा के चार शब्द उदाहरण लेके मुझे उच्चारण कर सकते हैं, लेकिन भीतर ही भीतर प्रशंसा से भर जाना बहुत मुश्किल है। ऐसी ही चीज है, इसलिए इनको तो आप सहम ही पाने की कोशिश करिएगा, इनको सहम उद्घाटित करने की कोशिश करिएगा। भगवान से आत्मीयता, भगवान से अनुराग, बस एक ही संबंध भगवान से हो सकता है। अभी तक हमने स्वार्थ का संबंध बनाया है या कि उपयोगिता का संबंध बनाया है, अपना काम करता है तो तीन दफे सत्य देवी भी आपके चरणों में चले जाएंगे, काम नहीं बटेगा तो नहीं। कभी ऐसे कहे कि बस हमने आया इसलिए आ गए थे महाराज, बैठने से आए, तो क्या आप कुछ मत बोलिएगा, हम तो बैठे हुए हैं आपके पास और फिर हमें चले जाएंगे। कभी भगवान के पास बैठे आकर के बैठे हैं, रात अंधेरे में नहीं तो खुले ही हो, हम जाकर के बैठ गए, कोई तो नहीं हमारा यहाँ पर और तुम और हम बैठे हैं तुम्हारे पास। ये बात तो कभी पंडित कैलाश चंद्र जैसे लोगों से जो कि स्वर्गवासी हो गए उनसे पूछिएगा कि उनकी परमात्मा से आत्मीयता कितनी थी। लोग सुनाते हैं कि जब उनको बुखार आता था 105 और शाम को अगर बुखार नहीं उतरा है और मंदिर जाने का समय हो गया तो बच्चों से कहते थे बनारस के, मुझे बेशक बिठा देना वहां पर, सामायिक तो करना है। बच्चे मना करते थे कि 105 बुखार नहीं, 105 बुखार नहीं, सामायिक पहले करें, जाकर के भगवान के पास खंभे से टिक के बैठ जाते। एक बार बच्चों ने पीछे झुक करके सुना कि क्या कहते हैं, तो वो कह रहे थे भगवान से जब सामायिक करवाने हो चाहे स्नान स्तोत्र भी हम तुम्हारा पढ़ते हैं, वो अगर पढ़वाने में हुए तो हम संयस हो तो पढ़ो नहीं गए, ठीक ठाक हो जाए तो पढ़ सका तो सामायिक कर सका, नहीं तो हमसे कठिन हो जिए बैठे हैं। भगवान तो मान रहे हैं क्या, मान मान नहीं रहे, अपनी श्रद्धा व्यक्त कर रहे हैं, अपना अनुराग व्यक्त कर रहे हैं कि कहां जाए। लोग तो डॉक्टर के पास भागे जाते हैं कि बुखार कैसे उतर रहे, प्लीज लेकर मैं कहीं नहीं गया, मैं दवाई देने नहीं गया, मैं डॉक्टर के पास, मुझे तो आपकी सामायिक का समय हो गया और सामायिक मेरे से ऐसे नहीं है, और बस बैठे बैठे चुपचाप वापस आते थे, बुखार का बता दिया, किसी को मालूम भी नहीं पड़ता। मैं आपको कोई दवाई नहीं बता रहा, मैं आपको बता रहा हूं कि आत्मीयता क्या होती है, मैं आपको अस्वीकार नहीं कर सकता, कैसे एक्सप्लेन करो, बस ऐसी वो चीज है ये बता सकता, आप देख लीजिए, मैं उसको व्याख्या नहीं कर सकता, मैं उसको आपको फील करवा सकता हूं। और एक और घटना, बहुत छोटी सी घटना, टॉलस्टॉय ने लिखी, एक द्वीप था समुद्र के बीच जिसमें एक एक करके तीन लोग पता नहीं कहां से कैसे पहुंच गए थे और वे तीनों वहां रहने लगे थे। तीन के अलावा वहां कोई नहीं था, वे तीनों वहां रहते थे। वहां उन्होंने देखा बहुत खोजने के बाद कि एक छोटा सा मंदिर मिल गया है, और उस मंदिर में जाकर के उन्होंने देखा कि वहां पर तीन प्रतिमाएं भी हैं। उन्होंने कहा कि क्या करें, हम भी तीन हैं
और ये प्रतिमाएं भी तीन हैं, इनकी पूजा भक्ति करनी चाहिए। आता जाता तो कुछ था नहीं, कैसे पूजा करें? ना उनको भक्तांबर याद था, ना सकल के गायक प्रदर्ति की, ना द्रौपदी सावन की गिनती याद थी। अपन तो देखो उनसे कितने होशियार हैं, अपन को सब था, जब चाहो तब सुन लो। हम ऊपर बता रहे हम अच्छे से अच्छे शब्दों में स्तुति कर सकते हैं, लेकिन उन्हें तो स्तुति आती नहीं, उन्हें तो शब्द आते ही नहीं थे। उन्होंने हाथ जोड़े, एक ने कहा क्यों ना ऐसा करें, हम भी तीन हैं, क्यों ना इतना ही कहें भगवान से, इतना ही पर्याप्त है। दूसरे ने कहा कि हाँ ये भी ठीक है, कुछ भी कबूल की प्रार्थना चली, वी आर थ्री, बस खत्म। भगवान के सामने जाकर खड़े हो जाते थे, कहते थे वी आर थ्री, हम तीन हैं। हो गई प्रार्थना, अब इससे ज्यादा और क्या हो सकता, उनको इससे जाता था। एक दिन उनके मन में आया ये भी तो तीन है, क्यों ना ऐसा कहा जाए यू आर थ्री। उन्होंने कहा ठीक, अगले दिन उनकी प्रार्थना शुरू हुई यू आर थ्री। तीसरे वाले ने कहा कि ऐसा नहीं, अब अपनी प्रार्थना पूरी हो गई, अब अपन जब जब उनके सामने जाएंगे तो कहेंगे यू आर थ्री वी आर थ्री, तुम भी तीन हम भी तीन, बस इतना ही संबंध पर्याप्त है। और वर्षों गुजर गए इस प्रार्थना को करते करते, वे आनंदित थे, वे खुश थे, वे अपने मगन थे, और कहीं कोई उनको परेशानी नहीं थी। लेकिन एक दिन उनको परेशानी आ गई, ऐसे लोगों को जल्दी